अगले दिन रियाज के ऑफिस में पारस रियाज के सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसने इनायत के घर पर जो कुछ भी हुआ था इस बारे में रियाज को कुछ भी नहीं बताया था। रियाज इस कंपनी का मालिक है, इतनी छोटी मोटी बात कर वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने इस बारे में ना बताना ही ठीक समझा। रियाज के पास और भी बड़े बड़े काम है करने के लिए। रियाज के एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और दूसरे हाथ से वो फाइल के पन्ने पलटते हुए कहता है, क्या खबर है पारस? पारस अपनी थूक निगलता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, सर हमारी आदमियों से खबर मिली है कि नवीन अहमद आपके दो अड्डों पर हमला करने वाला है। रियाज की आंखें सख्त हो जाती है और वो गुस्से में पारस को घूर कर देखने लगता है, तो पारस जल्दी से अपना चेहरा नीचे करता है और कहता है, बॉस ये सिर्फ अभी तक एक खबर ही है, इस पर पुष्टि नहीं की गई है। खबरें ने बताया है कि नवीन अहमद अपने किसी खास आदमी को आपके पास भेज रहा है ताकि समंदर के किनारे जो आपका पेंट हाउस है वहां पर और हवाई अड्डे के पास मौजूद आपके गोदाम पर हमला कर सके। रियाज अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ जाता है, वो सिगरेट का एक कस लगाते हुए धुएं को हवा में उड़ाता है और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, थोड़े दिन के लिए शेर ने आराम क्या कर लिया, भेड़ियों को लग रहा है कि जंगल उनका है। उसके बाद रियाज ने एक डेविल और मिस्टीरियस स्माइल के साथ पारस को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नवीन अहमद तक एक खबर पहुंचा दो कि उसकी खबर पकड़ा गया है। पारस हैरान हो जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो रियाज से सवाल जवाब कर सके। उसने हाँ में सिर हिलाया, हालांकि वो पकड़ा नहीं गया था, लेकिन उसे पता था कि अगर रियाज ऐसा कहने के लिए कह रहा है तो जरूर इसके पीछे भी कोई वजह है। उसके बाद रियाज ने सिगरेट का एक और कस लगाया और अपनी आंखों को छोटा करके कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। उसने तुरंत पारस को देखते हुए कहा, करण से कहो जल्द से जल्द मुझसे आकर मिले, पेंट हाउस में हथियारों की सप्लाई करण ही कर रहा है। पारस ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। करण रियाज का बचपन का दोस्त है और उसका बिजनेस पार्टनर भी। लीगल और इलीगल कामों में दोनों जगह पर करण रियाज के साथ काम करता है। रियाज और करण दोनों को पता था कि माफिया में उनका सबसे बड़ा दुश्मन नवीन अहमदी है और वो रियाज के इलीगल कारोबार को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए उसने अपनी जासूसों को रियाज की कंपनी में भेजा है। लेकिन रियाज उन लोगों का पता लगाता, पर उससे पहले उसे करण को सावधान करना होगा। रियाज पारस से बात कर ही रहा था कि एक झटके से ही दरवाजा खुलता है और बाहर से कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। रियाज कमरे के दरवाजे पर देखता है तो एक 75 इयर्स का आदमी गुस्से भरी नजरों से रियाज को देख रहा था। रियाज ने जल्दी से अपने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और खड़ा हो गया। पारस भी उसके साथ खड़ा हो गया। पारस ने धीरे से अपना सिर झुकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बड़े सर। वो आदमी केबिन के अंदर आता है और गुस्से में रियाज को देखकर पारस से कहता है, पारस अभी के अभी कमरे से बाहर जाओ, मुझे अपने पोते के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। पारस हाँ में सिर हिलाता है और फाइल उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। रियाज के दादाजी उसे घूर कर देख रहे थे, तो रियाज ने अपने दादाजी को देखते हुए कहा, दादूजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने मौजूद रियाज के दादाजी यानी कि उस्मान मलिक सैयद। दादूजान ने अपनी निगाहों से रियाज को घूरा और गुस्से भरे अंदाज में कहा, सलाम दुआ करना भूल गए हो क्या? रियाज गहरी सांस छोड़ते हुए अपना चेहरा नीचे कर लेता है और ना में सिर हिलाते हुए अपने दादाजी को देखकर कहता है, अस्सलाम वालेकुम दादूजान, अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है जिसके लिए आपको यहाँ तक आना पड़ गया। रियाज अपने दादाजी के पास आता है और उन्हें सोफे पर बैठाने लगता है। पूरी दुनिया में एक रियाज के दादाजी ही थे जिनके सामने रियाज हमेशा कमजोर पड़ जाता था, क्योंकि अपने वक्त पर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला ये इकलौता इंसान था जिसने अपने बाद अपना सारा साम्राज्य अपने पोते को दे दिया था। रियाज रियाज के दादाजी से बहुत प्यार करता है और वो उनकी बात कभी नहीं टाल सकता है। रियाज के दादाजी कभी रियाज के लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। रियाज ने रियाज के दिनों के किस्से कई बार सुने थे। जब वो माफिया के रूप में काम किया करते थे तो वो कितने क्रूर निर्दय थे और लोग उनसे कितना डरते थे। रियाज भी अपना ऐसा ही डर लोगों के मन में रखना चाहता है। रियाज ने अपने दादाजी को सोफे पर बैठाया और उनके सामने बैठते हुए कहा, अब बताइए दादूजान आपको यहाँ तक आने के लिए किसने कहा है? डॉक्टर अंकल ने मना किया है ना कि आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं है? अगर कुछ था तो मुझे बुला लिया होता, पर आपको हवेली से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? दादाजी ने भी शक्ति से कहा, मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। रियाज मुस्कुराते हुए कहता है, आपको कुछ मांगने की जरूरत है क्या? कुछ तो आप ही का है। लेकिन दादाजी ने भी अपने चेहरे से शक्ति कम नहीं होने दी और कहा, पर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, अगर तुम वो मुझे दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए? लेकिन दादाजी अपने पोते को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, सबसे पहले तुम हमारी कसम खाओ कि हम जो मांगेंगे तुम हमें दोगे। रियाज की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो कहता है, दादाजी अब इसमें कसम खाने वाली बात कहाँ से आ जाती है? आप ऐसा भी क्या मांगने वाले हैं मुझसे? नहीं, पहले तुम हमारे हाथ पर अपना हाथ रखो और कसम खाओ कि हम जो कहेंगे तुम वो करोगे और तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते हो। तो क्या वादा लेना चाहते हैं रियाज के दादाजान उनसे और क्या रियाज उनसे किया हुआ वादा निभा पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।